नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश इंडिया ओपन 2026 का खिताब जीता। मैनचेस्टर सिटी ने ईएफएल कप फाइनल में आर्सेनल को हराकर खिताब अपने नाम किया। बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए पहले तीन हफ्तों के फैन पार्क का शेड्यूल जारी किया और तीरंदाजी एशिया कप 2026 कल से बैंकॉक में शुरू होगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्क्वाश से, जहां अभय सिंह और अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। हमारे मुंबई संवाददाता ने बताया कि कल खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबलों में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया।
It turned out to be an evening of celebration for Indian squash as teenage superstar Anahat Singh and Abhay Singh, the country's top-ranked player, won the women's and men's titles respectively during the grand finale of the JSW Indian Open Squash 2026, a PSA Copa level tournament at the Cricket Club of India's Glass Courts in Mumbai. The 18-year-old world number 19 Anahat, who was the top seed and reigning champion, proved once again why she is one of India's brightest Olympic medal prospects by defeating the second seed Hannah Moitaz of Egypt 3-1. The scoreline reading 11-5, 11-6, 9-11, 11-6 in the women's final. The men's title clash was an all-Indian affair with the second seeded Abhay Singh overpowering his fourth seeded compatriot Veer Chotrani 3-love, 11-9, 11-8, 11-4. Abhay, who was the runner-up in the last edition of the tournament, did one better this time with fluent stroke play, giving Veer little chance to recover. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
राकेश, ब्राइटेस्ट ओलंपिक मेडल होप कहा जा सकता है अनहत सिंह?
बिल्कुल। देखिए, एक तो उनकी उम्र बहुत ही कम है, और अगर हम देखें पिछले कई सालों से जिस अंदाज से उन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, मतलब जिस कॉम्पिटिशन में इंटरनेशनल फ्लेवर है, जैसे ये वाला टूर्नामेंट है इंडियन ओपन, इसमें फ्लेवर था, मैं उसको बहुत स्ट्रांग फील नहीं मानता हूं। लेकिन जहां पे एक इंडियन अगर टॉप सीड है और डिफेंडिंग चैंपियन है और वहां के जीत रही है, ये आसान नहीं रहता है। मगर जिस आसानी से उन्होंने फाइनल जीता है, वो एक ये दिखाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल जितने कि एक यंगस्टर में हम लोग नॉर्मली उम्मीद करते हैं कि फिजिकल स्पोर्ट में वो उतने स्ट्रांग शायद नहीं रहे, क्योंकि वो एक ओपन फील्ड है। एज ग्रुप कैटेगरीज में कोई भी ऐसा फिजिकल स्पोर्ट है, रैकेट स्पोर्ट है जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको फर्क पड़ता है। जैसे शतरंज हो गया, जैसे जो बाकी गेम्स हो गए, उसमें आपको उतना नहीं करना है। शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, लेकिन टेनिस स्क्वाश जैसा स्पोर्ट जो फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, उसमें अगर आप बहुत यंग हैं और आपके ओपोनेंट जो हैं उम्र में आपसे थोड़े बड़े हैं, तो वो आपको फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग जो स्ट्रेंथ होता है, तो अनहत ने उस चीज को बिल्कुल ही उसने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं हटा दिया है पूरे इक्वेशन से, कि मैं चाहे जैसी भी हूं, मैं उसका जो गेम की जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं कर रही हूं। अभय को अगर आप देखें, इंडिया के अभी जो सबसे कंसिस्टेंट जो मान रहे हैं हम उनको, सौरभ वगैरह के जाने के बाद जो नया टैलेंट आया है उसमें, और चोटरानी काफी टाइम से खेल रहे हैं अभी उनके साथ हैं, तो उनकी भी जीत लगभग तय। और ये अच्छा था कि लास्ट टाइम वो फाइनल हारे थे और इस बार भी सेकेंड सीट थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फाइनल में इनको एक ऐसा खिलाड़ी मिला जो कि मेरे ख्याल से थोड़े नर्वस थे चोटरानी थोड़े से, और मगर जो जीत का मार्जिन जो है वो बहुत वन साइडेड था।
जी बिल्कुल। हालांकि ऐसा देखा गया कि टूर्नामेंट में अधिकतर इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर आसपास के ही साउथ एशियन रीजन के प्लेयर्स थे, लेकिन उसके बाद भी भारत के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि एक नई खेप स्क्वाश के खिलाड़ियों की, जहां अभय है, आपने वीर का जिक्र किया, वीर चोटरानी का, और अनाहत है, और एक लगातार एक लंबी बेंच स्ट्रेंथ पे तैयार होती जा रही है। ओलंपिक में इस परफॉर्मेंस को कन्वर्ट करना क्या यहां से कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है?
अभी आपको बहुत काम है इसमें, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जैसे स्क्वाश खेली जाती है, जैसे आप इंग्लैंड ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यहां के जो स्क्वाश प्लेयर्स हैं, इवन अगर आप लाइक सऊदी अरेबिया जो है, यूएई का जो इलाका है, वहां से भी खिलाड़ी निकल के आते हैं, लेकिन अभी हम ओलंपिक के होप, यस, क्योंकि उम्र इनके साथ है, काफी ओलंपिक्स इन्हें खेलना है, काफी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलनी है, तो पीएसए के बड़े सारे टूर्नामेंट्स इनको खेलने हैं अभी, तो अभी वो उम्मीद है। ये एक अच्छा टैलेंट है, काफी दिनों के बाद मेरे ख्याल से जो है दीपिका और उनके साथ जो खिलाड़ी थी दूसरी वाली, मैं उनका नाम अभी निकल रहा है, तो वो दोनों जैसे डबल्स में उन्होंने किया, सिंगल्स में बहुत अच्छा खेली है दोनों के दोनों, तो स्क्वाश में लेडीज में अब ये नया टैलेंट है, क्योंकि वो जो एक टाइम था, जैसे दीपिका अभी उन्होंने दो टाइटल जीता है यू नो आफ्टर मतलब दो बच्चे उनके हुए उसके बाद आई और दो टाइटल जीते उन्होंने मिक्स डबल्स भी जीता तो वो एक टैलेंट है लेकिन हमें इसमें एक से काम नहीं चलेगा हमें अभी कम से कम एक दर्जन अनाहत चाहिए होंगे
जी बिल्कुल
तो तब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि हाँ अब वो कंपटीशन है हमारे कंट्री में जबकि हम फिर ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप्स की और वर्ल्ड टाइटल की बात कर सकते हैं
जी बिल्कुल तो यहाँ पे जरूरत होगी कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को प्रिजर्व किया जाता है और आगे के लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है और बात करते हैं फुटबॉल की जहां मैनचेस्टर सिटी ने ईएफएल कप फाइनल में आर्सेनल को 2-0 से हरा करके खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर के लिए फाइनल में निको ओरेली ने दूसरे हाफ में 4 मिनट के भीतर 2 गोल करते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैनचेस्टर सिटी का ये 9वां ईएफएल खिताब होगा। तो एक और खबर यहाँ जो फुटबॉल के मैदान से आई, मैनचेस्टर सिटी लगातार परफॉर्मेंस दे रही थी, इस साल अच्छी लय में नजर आ रही है टीम।
जी बिल्कुल, देखिए कर्बाओ कप जैसे वो जीती है अभी 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 रेस में है वो बड़े टाइटल जीतने के, लेकिन कल का जो मैच रहा वो एक स्टेज पे लग रहा था कि नो आर्सेनल काफी टक्कर दे रही है, लेकिन वो जब 2 गोल के बाद थोड़ा मेरे ख्याल से जैसे कि एक फ्लैट हो जाता है कॉम्पिटिशन। एंड गार्डियोलो की टीम है अपने टाइटल जीतती मतलब जीतने के लिए उनका एक नाम है बड़ा, तो ये गार्डियोलो के लिए 19वां टाइटल था ये, और ये किसी भी कोच के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है
जी बिल्कुल।
और उनका एक रेपुटेशन रहा है बहुत कि वो एक कप विनिंग कोच कहलाते हैं। वो कंट्रोवर्सी में भी रहे लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को ये शेप दिया है ये मेरे ख्याल से बहुत
स्ट्रेंथ उनकी मानी जाती है कि वो टीम्स को चैंपियन बनाने की काबिलियत रखते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल की उल्टी गिनती अब तेज हो गई है और इसके साथ ही लीग से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने लीग के पहले 3 हफ्तों के लिए आईपीएल फैन पार्क का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहले 3 हफ्तों में 11 राज्यों के 15 शहरों में ये फैन पार्क बनाए जाएंगे। तो फैन पार्क एक अनूठा प्रयास था बीसीसीआई का आईपीएल का अधिक लोगों को खेल से जोड़ने का, और एक बहुत बड़ी लीग है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह के आयोजन जो है लीग को कितनी और जगह तक लोगों को कनेक्ट करने में मदद करते हैं और कितना बड़ा बनाने में भूमिका निभाते हैं अपनी।
देखिए फैन क्लब का जो रोल रहा है ये फैन को एंगेज करने का एक आपका तरीका होता है। अभी आप स्टेडियम में देखते हैं कि लोग आते हैं, पैसे देते हैं, मैच देखते हैं, चले जाते हैं। फैन क्लब्स में क्या होता है कि आप बड़े बड़े स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं और वहां पे कुछ कॉम्पिटिशन भी चल रहा होता है आपके लिए वहां पे बाकी चीजें होती हैं साइड बाय साइड। तो जैसे मान लीजिए कि 2 टीमें जो खेल रही हैं उसमें से एक टीम चाहे तो वहां पे अपना एक स्टॉल खोल लेगी, कुछ कर लेगी, यू नो वो उनको पूरी इजाजत दी जाती है कि आप फैन क्लब में भी आप कर सकते हैं और एंगेजमेंट रहती है। जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होंगे तो आपकी टीम की आपको जर्सी मिल जाएगी, की चेन मिल जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें, और फैमिलीज आ जाती हैं वहां पे क्योंकि स्टेडियम में एक तो खर्चा बहुत ज्यादा है, पूरा दिन आप वहां मतलब पूरा आप बैठे, लेकिन यहां वो जोश फरोश बिल्कुल वही रहता है। तो फैन क्लब्स का ये जो था ये एक्चुअली बाहर के कंट्रीज से आया है,
गेम से, फुटबॉल से
आया है। टेनिस में आप देखते हैं कि जितने भी आपके बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जहां आपको पता है कि फुल हाउसेस होंगे और मगर फैंस तब भी देखना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े स्क्रीन लगा देते हैं बिल्कुल स्टेडियम के बाहर, जहां मैच हो रहा है उसके बाहर भी लोगों को एंगेज किया जाता है। तो ये आइडियाज वहीं से लेके आए हैं और जब से ये शुरू हुआ है वो सिर्फ ग्रो करता चला गया क्योंकि स्पॉन्सर्स को लगता है कि इसमें हम मतलब जितने स्टेक होल्डर हैं, स्पॉन्सर्स ही क्यों, सबको ही लगता है कि इसमें फायदा है क्योंकि आईबॉल्स आपके जो है बढ़ जाते हैं। और ये मान के चलें कि आईपीएल इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, आपका इनहाउस टूर्नामेंट है, इसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इसको आप जितना ज्यादा फैंस के साथ लेके चलेंगे, एक टीम के साथ एक लॉयल्टी आपने बिल्ड किया है 2008 से लेके अब हम 2026 पे पहुंच गए हैं, बहुत लंबा एक जो है एक फासला तय किया गया है। तो इसमें आप जब तक ऐसी नई चीजें इनोवेशन नहीं लाएंगे, एक्टिविटीज नहीं इन्वॉल्व करेंगे, फैन एंगेजमेंट नहीं हो पाती है।
जी बिल्कुल, और स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ाने में भी काफी हद तक मदद करते हुए नजर आते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं। तीरंदाजी एशिया कप 2026 कल से बैंकॉक में शुरू होने जा रहा है। पुरुष कंपाउंड तीरंदाज ऋषभ यादव और एशियाई खेलों के 3 स्वर्ण पदक विजेता प्रथमेश जावरकर टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
भारत ने इस बार अपनी टीम में नामी गिरामी सितारों की जगह प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों पर दाव लगाया है। 16 सदस्यीय भारतीय दल में 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में भाग लेंगी। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, धीरज, तरुणदीप राय, ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस बार टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह ऋषभ यादव, प्रथमेश जवकार टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे। ऋषभ यादव हाल के वर्षों में भारत के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले कंपाउंड तीरंदाजों में से एक हैं। चिकिता तनिपार्थी भारत की शीर्ष क्रम की महिला कंपाउंड तीरंदाज होंगी। रिकर्व के पुरुष वर्ग में देवांग गुप्ता, आरव पुनिया, जोएल सरकार, सुखचैन सिंह कर, महिला वर्ग में कीर्ति, अंशिका कुमारी, रूमा विश्वास, रिद्धि भारत के दल का हिस्सा है। वहीं कंपाउंड के पुरुष वर्ग में रजत चौहान, प्रथमेश जावकर, उदय कम्बोज, ऋषभ यादव शामिल है। भारतीय टीम प्रबंधन की नजर इस टूर्नामेंट में सितंबर अक्टूबर में होने वाले एशियाई खेलों तक चलने वाले इस व्यस्त सत्र के पहले अपने युवा खिलाड़ियों की क्षमता आजमाने पर होगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने बड़े खिलाड़ियों को आजमा करके उनको बराबर हौसला देना या फिर उनको थोड़ा सा ब्रेक देकर के अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना, कौन सी तकनीक ज्यादा बेहतर मानी जाएगी? राकेश,
देखिए आर्चरी जैसा है, इसका हमारा बेस तो बना हुआ है, क्योंकि हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन एक काफी सालों से, मैं अगर देखूं तो कम से कम 1988 से, ये जब से स्पेशल एरिया गेम्स शुरू हुए थे, तब से आर्चरी के ऊपर एक इंडिया ने हमेशा फोकस रखा है। ये भी कहा जाता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो गए या ओलंपिक्स हो गए, वहां हमने अपने फैंस को निराश किया है, कंसिस्टेंटली निराश किया है। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है, क्योंकि जब तक आप यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे इंटरनेशनल फील्ड में जाके के खेलने का, और अभी देखिए हमने एक यंग टीम भेजी है, वो ऑलरेडी इंडिविजुअल इवेंट्स के प्री क्वार्टर फाइनल में हमारे काफी लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अभी जैसे सुखचैन सिंह हैं, देवांग गुप्ता हैं, ये रिकर्व मेंस में, और चिकिता जो हैं, और राज कौर, तेजल सालवे एंड स्वाति धुंधवाल, ये कंपाउंड में, ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं आज अभी तक जो खबर आ रही है। तो क्वालिफिकेशन जब राउंड हुआ था तो गुप्ता एंड चितकारा दोनों अपने अपने जो ग्रुप में दे वर बेस्ट, तो क्वालिफाइंग में जब आप टॉप करते हैं तो आपका उसको फायदा यह रहता है कि अगर 64 प्लेयर्स हैं तो आप अगर नंबर वन हैं और मैं 64 हूं तो हमारा जो है फर्स्ट राउंड में हमारा मुकाबला होगा। फिर इसी तरह मुझे मेरे से नीचे खिलाड़ी मिलते रहेंगे और यू नो मुझे मेरे से ऊपर के ही मिलेंगे, बिकॉज मैं तो लास्ट हूं वैसे भी, तो वैसे ही वो ड्रॉ चलता रहता है। तो टॉप करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको फिर ऑपोजिशन वाइज आपको थोड़ा वीकर ऑपोजिशन मिलता है।
बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कल से बैंकॉक में जो तैयारियां शुरू होंगी एशियन गेम्स के लिए, भारतीय आर्चरी के लिए एक बहुत बड़ा मंच साबित होने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत नई अवसंरचना और युवा उभरती हुई खेल प्रतिभाओं के बल पर बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता भारतीय सेना के पूर्व कप्तान तथा निशानेबाजी ओलंपिक खिलाड़ी जीतू राय की देखरेख में सिलीगुड़ी में एक अकादमी शुरू होने जा रही है, सुनते हैं एक रिपोर्ट।
प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सेना के भूतपूर्व कप्तान श्री जीतू राय द्वारा आगामी 26 मार्च सिलीगुड़ी के निकट जीतू राय निशानेबाजी अकादमी का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अकादमी द्वारा पश्चिम बंगाल, सिक्किम व पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के आकांक्षी निशानेबाजों को उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। जीतू राय निशानेबाजी अकादमी खोलने से केवल इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल व भूटान के युवाओं को भी निशानेबाजी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
राकेश, बड़ा खिलाड़ी वही नहीं जो बड़ी प्रतियोगिताओं में बड़े मेडल जीते, उसके बाद अपनी आने वाली खेप को आप किस तरह तैयार करते हैं और वो किस तरह लजिस्टिक ट्रांसफर करते हैं, ये मायने रखता है जीतू राय को की और अब उनकी बारी है।
बिल्कुल, देखिए जीतू राय को मैं बहुत टाइम से जानता हूं और जीतू राय का एक डिमिनर रहा है बहुत ही शांत स्वभाव के, और उन्होंने अपनी शूटिंग से बात की, उनके आपको बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, बहुत कम बोलते हैं, और ये भी जो उनका एक्शन है, ये उन्होंने बिना बोले जो उन्होंने एक अकेडमी एस्टेब्लिश किया है, और कम से कम अभी 16 साल ऐसे हो गए हैं 2010 का जब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया था, उससे पहले से जो इंडिया जो शूटिंग को जो एनकरेज करती जा रही है और वो अभी तक है, सबसे ज्यादा खर्चा इंडिया आज भी शूटिंग के ऊपर कर रही है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ओल्ड एक्स प्लेयर्स अपने गेम से जो सीखा है वो एक नई जो पीढ़ी है उनको वो देना चाहते हैं।
जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो आपने शूटिंग की बात की, एथेंस से जो परंपरा शुरू हुई थी राजवर्धन सिंह राठौर की, वो यहां तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।